श्रीमद् भागवत स्कंद 4 अध्याय 30 श्लोक संख्या 26। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः कमलकिञ्जलक पिसंगा अमलवाससे पिसंगामलवाससे सर्वभूत निवासाय नमो युक्ष्महि साक्षिणे, नमो युक्ष्महि साक्षिणे। नमः कमलकिञ्जलक पिसंगामलवाससे सर्वभूत निवासाय नमो युक्ष्महि साक्षिणे, नमः कमलकिञ्जलक पिसंगामलवाससे सर्वभूत निवासाय नमो युक्ष्महि साक्षिणे। महाकमलपिञ्जल्प पिसंगामलवाससे सर्वभूतनिवासाय नमो युक्ष्महि साक्षिणे। महाकमलकिञ्जल्प पिसंगामलवाससे नमः कमलकिञ्जलक नामलवाससे सर्वभूतनिवासाय कमलकिञ्जल शब्दानुवाद नमः नमस्कार है, कमलकिञ्जल का कमल पुष्प के केसर के समान, पिसंग पीला, अमल स्वच्छ, बास से उसको जिसका वस्त्र, सर्वभूत समस्त जीवों के निवास आय आश्रय को नमः नमस्कार। अयुक्ष्महि करने दो, करते हैं साक्षिणे परम साक्षी को। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। हे भगवान, आपके द्वारा धारण किया गया वस्त्र कमल पुष्प के केसर के समान पीले रंग का है, किंतु वह किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। प्रत्येक हृदय में निवास करने के कारण आप समस्त जीवों के समस्त कार्यों के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। हम आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान के वस्त्र तथा उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन हुआ है। भगवान पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं, किंतु उसे कभी भौतिक नहीं समझना चाहिए। उनके वस्त्र भी भगवान हैं, वे भगवान से अभिन्न हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक हैं। सर्वभूत निवासाय शब्द और आगे स्पष्ट करता है कि भगवान किस प्रकार प्रत्येक हृदय में वास करते हैं और बद्ध जीव के सारे कार्यों के प्रत्यक्ष साक्षी का कार्य करते हैं। इस जगत में बद्ध जीव इच्छाएं रखते हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। इन सारे कार्यों को भगवान देखते रहते हैं। इसको पुष्टि भगवत गीता द्वारा इसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा 15:15 में भी होती है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानमपोहनम च। मैं सबों के हृदय में आसीन हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में उपस्थित हैं और जीव को बुद्धि प्रदान करते हैं। जीव की इच्छाओं के अनुसार ही भगवान उसे स्मरण या विस्मरण कराते रहते हैं। यदि जीव आसुरी होता है और भगवान को भुलाना चाहता है तो भगवान उसे ऐसी बुद्धि देते हैं कि वह उन्हें सदैव भुला रहे। इसी प्रकार जब भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है तो परमात्मा स्वरूप भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह भक्ति में प्रगति करे। भगवान हमारे सारे कार्यों के साक्षी बने रहते हैं और हमारी इच्छाओं को अनुभव करते हैं। परमेश्वर हमें इच्छा अनुसार कार्य करने की सुविधाएं प्रदान करते हैं।
श्रीमद् भागवत में मुख्य रूप से सबके आश्रय भगवान श्री कृष्ण हैं, इस बात का निरूपण किया गया है। ऐसे इसमें 10 विषयों का निरूपण हुआ है। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणमूर्तय। मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 विषयों का निरूपण हुआ है इसमें, लेकिन 10 विषय जो हैं मुख्य रूप से दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम यह लक्षण। श्रीमद् भागवत में जो 10 विषय हैं तो उनमें जो 9 विषय हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति कर्म वासनाओं को उति कहते हैं, और मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय। तो 10 विषयों का वर्णन है, लेकिन दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम यह लक्षण। दशम जो आश्रय है भगवान है, उनके विशुद्धि के लिए, क्लियरेंस के लिए, क्लियर हो जाए, साफ स्पष्ट हो जाए, नवा नाम है लक्षण। नौ विषयों का यहाँ पर लक्षण दिया गया है कि ऐसा ऐसा ये विषय है ऐसा। तो यहाँ पर कैसे विसर्ग हुआ, भगवान ने सृष्टि, भगवान के द्वारा जो सृष्टि के सामान प्रस्तुत कर दिए गए और उसके बाद संसार में सृष्टि चलने लगी, जीवों का सृष्टि हुई, तो उसमें जीवों के द्वारा जीवों की सृष्टि जो हुई है विसर्ग, प्रजापतियों के द्वारा प्रजाओं की सृष्टि। तो अब उस विषय में सृष्टि भगवान से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से प्रजापति लोग उत्पन्न हुए और उसके बाद उनके द्वारा जो शिष्ट लोग हैं, प्रजापति हैं और विशेष लोग, उनके द्वारा सृष्टि हुए। तो मनु महाराज का वंश परंपरा चला, उसमें कहते ये प्रचेताओं का वर्णन है। प्रचेता लोग प्राचीन बरही के पुत्र थे और दस संख्या में दस भाई थे, एक स्वभाव के एक शील स्वभाव थे और पिता की आज्ञा हुआ कि आप सृष्टि बढ़ाओ तुम लोग। तो सृष्टि बढ़ाने के लिए लोग तप करने का विचार किए और समुद्र के निकट ही, समुद्र जैसा ही जो सरोवर था उसमें जा करके और तप करना शुरू किए। तो उसी समय शिव जी का साक्षात्कार होता है, शिव जी, और शिव जी ने इन्हें रुद्र गीत का उपदेश किया और उस रुद्र गीत का उपदेश से अनुसार ये लोग उसका जप करने लगे। 10,000 वर्षों तक से तपस्या किए तो भगवान उनके सामने साक्षात, जो कि सबके आश्रय हैं, प्रकट हुए। तो उस समय भगवान का जो स्वरूप था वो अष्ट भुजा वाला था। ऐसे भगवान चार भुजा के हैं सब प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर जो भगवान के दर्शन हुए तो आठ भुजा वाले भगवान हैं और पार्षदों सहित भगवान उनके सामने उपस्थित हुए। तो भगवान के तो हजारों हजारों भी भुजा हैं और परम मनोहर लगते हैं, आठ भुजाओं से सुशोभित है, बहुत सुंदर रूप था। उस रूप को देख करके प्रतिताओं का मन बुद्धि आकर्षित हो रहा था और विमोहित हो रहा था उस रूप को देख करके और उसकी स्तुति करने लगे, प्रशंसा करने लगे। भगवान के जो रूप गुण हैं, जो उसमें विशेषताएं हैं, उनको वाणी से व्यक्त करने लगे। वाणी का ऐसा स्वभाव है कि भगवान के रूप को और गुण को देखता है तो उसको बोलने की उसकी सहज प्रवृत्ति होती है। इंद्रियों का स्वभाव है कि अपने स्वामी को संपर्क में आते हैं तो उसके लिए मचल उठते हैं। तो भगवान के स्वरूप को देख करके और वो लोग साक्षात वर्णन करने लगे। तो परंपरा अनुसार रोज रोज कथाएँ, तो एक श्लोक की कथा होती है तो एक ही बात की बार बार आवृत्ति होती ही रहती है और आप लोग भी सब बातों से अवगत ही हैं। कथा कहने वाले तो अब जो श्लोक में है उसकी विशेषता को व्यक्त करते हैं और चाहे उनमें जो विशेषता है उसको व्यक्त करते हैं। तो अब श्लोक जो है वो भगवान के रूप को व्यक्त कर रहा है और थोड़े में श्लोक है, इसमें बतला रहे हैं कि भगवान अष्टभुजा से उनके सामने खड़े प्रत्यक्ष हैं, देख रहे हैं। और अगले श्लोकों में जैसे नमः कमल नाभ है, जिनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, चाहे जिनकी नाभि कमलाकृति है, उन भगवान को नमस्कार है। भगवान के सुंदर नाभि जो कमल के आकृति की है, या जिन भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, सृष्टि उत्पन्न होला कमल प्रकट हुआ था, उस सुंदर नाभि को देख करके और उसका उस सुंदर रूप को धारण किए हैं भगवान, उनको नमस्कार करें। नमस्कार बरबस हो रहा है, क्योंकि भगवान को जब सम्मुख हो गए तो उनको बिना नमस्कार किए जीव मानेगा नहीं। ये लोग नमस्कार बिल्कुल स्वाभाविक रूप से कर रहे हैं। नमः कमल नाभ है, नमः कमल मालिनी, भगवान के अंग प्रत्यंग में कमल की शोभा है और जो कमल की माला पहने हुए हैं ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं। भगवान का स्वभाव है कमल की माला पहनते हैं। जब काल जमन भगवान को पीछा किया तो भगवान उस समय कमल की ही माला पहन करके और निकले थे। नारद जी पहचान बतलाए थे काल जमन के कि वो कृष्ण कमल की माला पहना होगा, देखा कि तो वही है और उनको खदेड़ दिया तो भाग गए। तो कमल मालिनी, जो कमल की माला पहनते हैं उनको नमस्कार है। नमः कमल पाद आय, और कमल के समान सुकुमार जिनके चरण हैं उन भगवान को नमस्कार है। कमल जैसा है ऐसा ही कोमल भगवान के चरण हैं, उनको नमस्कार। और नमस्ते कमल एक क्षण, और भगवान की आँखें कमल के समान शीतलता और वात्सल्य की वर्षा कर रही है। कमल से शीतलता और सौंदर्य निकलता है। उस वजह से भगवान अपने दसों प्रजेताओं के प्रति इस करुणा और शीतलता भरी दृष्टि से देख रहे हैं, उसको अनुभव करते हुए कह रहे हैं कम नमः ते कमलेक्षण, हे कमलेक्षण आपको नमस्कार है। तो अब भगवान के पोशाक पर उनकी दृष्टि जाती है। पोशाक पीला है, पीत वर्ण का है, पीताम्बरधारी भगवान है। तो कैसा है तो नमः कमल किंजल का, कमल का पुष्प होता है तो उसका जो पराग होता है वो पीले पीले रंग का होता है, पराग वाला बीच वाला स्थान गद्दी, और उसका जो रंग होता है शोभा होता है उसको नहीं कि नमः कमल किंजल का पिसंगा मलवास से, और पिसंग पिसंग का मतलब पीत, पीलापन लिए हुए जो है पिसंग है, पीत वर्ण का है जो है, और अमल वास से और निर्मल वस्त्र है। अमल का मतलब जो एक हो, उसमें दूसरा चीज न हो, खांटी शुद्ध। तो भगवान अमल हैं, शुद्ध हैं, और उनका जो वास है वस्त्र है वह भी अमल है। ने माया के मल से सना हुआ नहीं है, गुणातीत है। जैसे भगवान शुद्ध चिन्मय हैं, उसी प्रकार से भगवान के वस्त्र भी शुद्ध और चिन्मय हैं। ऐसे वस्त्र वाले पीतांबर धारण किए हुए प्रभु आपको हम नमस्कार करते हैं। और बहुतड़ित प्रभु, जैसे बिजली में कौंध होती है, चमक होती है, उसी प्रकार से भगवान का जो पीतांबर है वह चमक रहा है, पीले पीला है और उसमें प्रकाश है, तीव्र प्रकाश है। तो
कहें कि ऐसे वस्त्र सुंदर वस्त्र धारण करने वाले प्रभु को नमस्कार करते हैं। सर्वभूत निवास आय नमोक्ष्म ही साक्षी, और आप समस्त जीवों के निवास हैं, ऐसे प्रभु को नमस्कार है। भगवान सामने खड़े हैं और वे लोग वहीं पड़े हुए हैं, फिर भी कह रहे हैं कि सर्वभूत निवास आय, जितने भी जीव हैं जितने भी भूत हैं वो सबके आप आश्रय हैं, आप में निवास करते हैं, या यहाँ पर आप ऐसे विराजित हैं, फिर भी जितने भी भूत हैं जितने भी जीव हैं उन सबके हृदय में भी आप इसी समय ज्यों के त्यों विराजित हैं, ऐसे प्रभु को नमस्कार है। भगवान में अचिंत्य शक्ति है और भगवान ऐसे महान हैं कि सब सारा संसार सभी जीव उनमें निवास कर रहे हैं, उन्हीं के अंदर भरे हुए हैं और वे सभी जीवों के अंदर प्रविष्ट हैं। अहम यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचम, जो सब जगह मुझको देख रहा है देखता है सब जगह, यो माम पश्यति सर्वत्र, कोई भी चीज़ दिखाई पड़ रहा है आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह जो भगवान को देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र, कोई भी आदमी कोई भी वस्तु कोई भी स्थान कोई भी बात विचार भाव जो सब में भगवान को देखते हैं, और सर्वम च मई पश्यति, और सब चीज़ों को भगवान में देखता है, माने भगवान को सबके अंदर देखता है और सब वस्तुओं को भगवान में देखता है। तस्याहम न पणस्य, भगवान कहते हैं मैं उसको नहीं भूलता, जब वह नहीं भूल रहा है सब जगह देख ही रहा है भगवान को, तो भगवान कहते हैं कि उसको मैं नहीं भूलता, सच में न पणस्य वो भी मुझे नहीं भूलता, तो भगवान सब जगह हैं। ये लोग 10,000 वर्ष तपस्या किए हैं, सारी साधनाओं को पूरी कर लिए हैं और अनुभव कर रहे हैं कि ये वही भगवान हैं जो सब जीवों में व्याप्त हैं और सभी जीव जिनमें निवास करते हैं वही भगवान यहाँ पर प्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्ष अब अपरोक्ष अनुभूति वहाँ है, भगवान में सभी जीव कैसे हैं और भगवान सब जीवों में कैसे हैं ये तो हम लोग शब्द से सुनते हैं अनुमान करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं, ये लोग प्रत्यक्ष अनुभव करके और उसको व्याख्यान कर रहे हैं बोल रहे हैं बतला रहे हैं। नमो अयूक्ष्म ही साक्षी ने, अयूक्ष्म ही कृतवंत, श्रीधर स्वामी उसमें टीका बोलते हैं कृतवंत कृतवंत, हम लोग प्रणाम किए कर रहे हैं किए हुए हैं, मतलब हम लोग हमेशा 10 और 9 जोड़ करके आपको दंडवत कर रहे हैं, अयूक्ष्म ही आपसे संयुक्त अपने को कर रहे हैं, आप साक्षी रहे कोई कोर कपट से नहीं, तहे दिल से हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, आप सब जीवों के साक्षी हैं, क्या कोई कर रहा है क्या सोच रहा है क्या विचार रहा है भगवान हृदय में पहले से बैठे हुए हैं, देख लेते हैं कि कपट कर रहा है कि वास्तव में पढ़ा है, तो प्रभु आप देख रहे हैं सही में, हम तहे दिल से हम आपको अयूक्ष्म हम प्रणाम किए, हम आपके शरणागत हो गए, आपके चरणों में गिर गए, इस प्रकार से वो स्तुति कर रहे हैं।
यही भगवान सबके आश्रय हैं और इन्हीं का भजन करने के लिए सब वेद शास्त्रों में कहा गया है। वेदश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विवेच, समस्त वेदों के द्वारा ये जिन भगवान का है प्रचेता लोग नमस्कार कर रहे हैं यही समस्त वेदों के द्वारा वेद्य है भगवान और सभी वेद इन्हीं का निरूपण करते हैं। तो ऐसे भगवान को भक्त लोग प्रणाम कर रहे हैं। प्रचेताओं से सृष्टि विशेष रूप से बढ़ी है। प्रचेता के पुत्र हुए दक्ष प्रजापति और दक्ष प्रजापति के संततियों से यह सारा संसार आपूरित हुआ है। तो विसर्ग का वर्णन इसमें किया गया है और तो समस्त साधनाओं का चरम फल है भगवान का दर्शन कर लेना, भगवान को सामने प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर लेना। ये जो परम भाग्यवान होते हैं जिनकी साधना पूरी होती है वे लोग के सामने भगवान प्रकट होते हैं। जिनके समस्त जन्मों के पुण्य एकत्रित होकर होते हैं वे लोग भगवान का दर्शन कर पाते हैं। इसी के लिए सारी साधनाएं हैं, सभी क्रियाएं हैं, सभी योग हैं। इसको प्राप्त करके ये लोग कृतार्थ हो रहे हैं और महाजन लोग कैसे भगवान को प्राप्त कर लें। सबके आत्मा जो अपने हैं उन भगवान को प्राप्त कर लें इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। महात्माओं का स्वभाव है कि दूसरों के दुख को दूर करने के लिए वो लोग प्रयास करते रहते हैं। भगवान के दर्शन करके, भगवान का साक्षात्कार करके उनका दुख तो समाप्त हो गया होता है, लेकिन दूसरों के दुख से वे लोग दुखी हो करके और दूसरों के दुख को दुख दूर करने के लिए भगवान की भक्ति की स्थापना करते हैं, इसके लिए प्रयास करते हैं। ये सब महात्माओं का स्वभाव है, भगवान के भक्तों का स्वभाव है। तो नारद जी इसी कारण में रहते हैं। भारतवर्ष के अधिष में भगवान नर नारायण की द्युति है और उसमें उपासक नारद जी हैं। उद्धव जी के साथ बद्रिकाश्रम में भगवान नर नारायण की पूजा करते हैं और पूरे भारतवर्ष में जो धर्म भूमि है और कर्म क्षेत्र है, कैसे भगवान की भक्ति हो और श्रेय कार्य हो इसके लिए बद्रिकाश्रम में रह करके नारद जी योजनाएँ बनाते रहते हैं कि भारत भूमि में जो कर्म भूमि है जहाँ कोई भी कर्म करने से बहुत शीघ्र फलीभूत होता है और श्रेष्ठतम फल देता है, तो इस कर्म भूमि में लोग भगवान को जान सकें
और जान करके भगवान का यजन करें, पूजा करें और भगवान को प्राप्त करें। इसके लिए नारद जी का हमेशा से प्रयास चलता है। और योग्य अधिकारियों को नारद जी उपदेश किए हैं, भगवान की भक्ति में लगाए हैं और वे लोग भगवान की भक्ति में लग करके स्वयं भगवान के चरणों में पहुँचे हैं और दूसरे दूसरे जीवों को भी पहुँचाने का कोशिश करते हैं, पहुँचाए हैं, उनके साथ से पहुँचाए हैं। तो ध्रुव जी मनुष्यों में हैं, उनको नारद जी ने भगवान में लगाया, भगवान की प्राप्ति उन्हें हुई। और ऐसे मनुष्यों
मनुष्य समाज में
और दैत्य समाज में प्रहलाद जी हैं, उनको गर्भ में ही अवसर पा करके और भगवान की भक्ति का उपदेश किया नारद जी ने। कयाधु माँ के जब गर्भ में थे प्रहलाद जी, तो उसमें उपदेश किया और प्रहलाद जी
जन्म से पहले ही भक्त हो गए,
ऑटोमेटिक भक्त हो गए प्रहलाद जी। और
नारद जी प्राचीन बरही ये परम पवित्र शुद्ध पुरुष थे, लेकिन इनकी बुद्धि कर्म कांड में
असर थी। भगवान की साक्षात भक्ति योग में नहीं उपस्थित थे, ये कर्मकांड के द्वारा भगवान को उपासना करते, भगवान के अंग प्रत्यंगों की। तो इतना यज्ञ किए कि पूरा पृथ्वी पूर्व के तरफ कुशाग्र वाले कुशों से भर गया। तो ऐसे निष्ठावान, आस्थावान और श्रद्धालु श्रेष्ठ पुरुष को नारद जी ने भगवान की भक्ति का उपदेश दिया, पुरंजनोपाख्यान सुनाया कि किस प्रकार से जीव एक पुरी में रह रहा है, इस शरीर पुर है, नगर है, और इस शरीर में जीव निवास कर रहा है और परमात्मा को से वियुक्त हो गया है। इस प्रकार से इस रूपक के द्वारा उन्होंने भगवान की भक्ति में उन्हें लगा दिया और भगवान के भजन करके भगवान को साक्षात पाए हैं प्राचीन बरही में। तो इस प्रकार से इस भारत भूमि जो देवताओं के लिए भी प्रार्थ होता है, इसमें नारद जी भगवान की भक्ति के लिए चारों चतुर्विध रूप से युक्त हैं, लगे हुए हैं और उनका क्षेत्र है। इसलिए नारद जी हर पुराणों में, हर शास्त्रों में, हर संप्रदायों में आप नारद जी को पाते हैं। नारद जी में कोई मान सम्मान या इसका कोई भावना नहीं है, वो असुर समाज में भी भगवान की भक्ति का प्रचार कर देते हैं। अधिकारी भेद का बहुत महत्व है, कैसे कोई भक्ति करेगा, कर सकता है
बिना भगवान के भक्ति के, तो कोई भवसागर को पार नहीं करेगा, जन्म मृत्यु के प्रवाह को लंघेगा नहीं।
लेकिन कैसे भक्ति करेगा, इसकी योग्यता की परख रखते हैं नारद जी। और सब समाज में जैसी जिसकी योग्यता है वैसे उसको उपदेश करते हैं और वो भगवान के संसर्ग में आ जाता है। क्योंकि बिना भगवान के संसर्ग के इस संगात विलियते माया का विनाश नहीं हो सकता है, उपाधियों से छूट करके और भगवान के पास पहुंच जाए जीवन नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस संग हो जाए, भगवान में आसक्ति हो जाए, भगवान में भक्ति हो जाए, इसकी योजना नारद जी सबसे अधिक जानते हैं और ऐसा करते रहते हैं। अब प्रचेताओं के बाद में यज्ञ हुआ है, उसमें नारद जी का प्रवचन हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन है। जैसे प्रभुपाद जी पूरा उनके दिल में था कि सारे संसार में लोग कृष्ण के भक्त हो जाए। एक ही सारा ग्रंथ इनका देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, एक ही प्रभुपाद जी के मन में लालसा है कि लोग कृष्ण के अनुरागी हो जाए, उनके भक्त हो जाए, उनके अनुभव हो जाए, उनकी भावना में रहे कृष्ण के। इस उद्देश्य से प्रभुपाद जी ने बहुत बहुत से प्रयास किए, बहुत बहुत कार्य किए, बुढ़ापे के अवस्था में बहुत ऐसा कार्य किया जो अद्भुत प्रभाव वाला। और सही है, ऐसे लोग जो यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत् तदेवेतरोजन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो प्रमाण कर देते हैं कि यह सही चीज है, यह धर्म है, तो लोकस्तत् अनुवर्तते, सारा दुनिया उसी का अनुवर्तन करता है। ये भागवत क्लास है, एक श्लोक लिख दिया जाता है रोज, उसके बाद उस अगला श्लोक लिख दिया जाएगा, रिपीटिशन होगा, पढ़ेगा, और प्रभुपाद जी ने इसको प्रमाण कर दिया। मन लगे तब सुनो, न मन लगे तब भी सुनो, करना है इसको, सुनना है। बड़े विद्वान हैं तो अभी सुने, सामान्य नया नवसिखुआ है वो अभी सुने, रोज सुने, एक ही श्लोक रोज सुने, ये प्रमाण कर दिया अस्था। अब जब से किया तब से अब चल रहा है, इससे बहुत भारी लाभ है। पूरा यह इस्कान की जान है, भागवत का प्रवचन होने से, क्लास होने से स्वाभाविक रूप से भक्तों को ज्ञान हो जाता है, समझ आ जाती है। रोज सुनते सुनते, समझते, पढ़ते, लिखते, करते करते ये समझ में आ जाता है कि कृष्ण हमारे स्वामी हैं, कृष्ण हमारे प्रभु हैं, ये समझ में आ जाता है। नहीं समझ में आने पर भी समझ में, दिल में धंस जाता है, नहीं कृष्ण हमारे ईश्वर हैं, नाथ हैं, प्रभु हैं। तो प्रमाण कर दिया प्रभुपाद जी ने, इसको चलाया है, इसको चल रहा है। बड़े विषम विषम समय आया जब इस्कान में बहुत भयावह स्थिति थी, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ये छिन्न भिन्न भी हो सकता था, लेकिन ये भागवत क्लास से इतने ज्ञानी पुरुष पैदा हो गए, वो जो भागवत होता है इसे इतने इसके भक्त ज्ञानी हो गए कि वे लोग अपने ज्ञान से इस्कान ज्यों का त्यों बना हुआ है और आज सारे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहा है। ये प्रभुपाद जी की देन है और वास्तव में प्रचार हो रहा है इस्कान के माध्यम से, बहुत प्रचार है। सारा मंदिरों में इतना भीड़ हो गया, मंदिर में भक्त लोग भी शुद्धापूर्वक निवास करते हैं, भजन करते हैं या प्रचार भी करते हैं, सब सुविधाएं भी प्रभुपाद जी ने ऐसे करके। तो महत्पुरुष लोग, श्रेष्ठ पुरुष लोग जो कुछ प्रमाण कर देते हैं, लोग उसी का अनुवर्तन करता है और उससे जाने अनजाने फायदा होता रहता है। भागवत का जो क्लास है इससे बहुत भारी भक्तों को लाभ है और उससे लाभ लेना चाहिए। जय श्री राम।